मुख्य समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम वेतन पाने वाले कामगारों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग राहत। पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद दर्जन से अधिक लोग मृत्यु। अमेरिका में एक अदालत के फैसले पर यूएन आलोचना, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर प्रभाव डाल सकती है। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स का कहना है कि सरकार अगले बजट में जीवन यापन के दबाव को कम करने के लिए और मदद की योजना बना रही है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन में 5.2% की वृद्धि हुई है, जिससे सबसे कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को प्रति सप्ताह अतिरिक्त $40 मिलते हैं। श्री माल्स का कहना है कि वृद्धि से कुछ राहत मिलती है, लेकिन सरकार अधिक सहायता उपायों की योजना बना रही है।
We took to the election a range of measures which would go to the question of cost of living relief. I've mentioned wages, but we're looking at having more affordable childcare. We're looking at putting in place free TAFE for those who are studying in an area of skill shortage.
मेडिकल छूट में बदलाव के तहत डॉक्टर्स की फीस में लागत थोड़ी कम हो गई है। छूट में 1.6% की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि लोगों को मेडिकेयर से मानक $90 परामर्श पर $39.75 वापस मिलेंगे, जो पहले $39.13 थे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर के लिए डॉक्टर शार्लेट हेस्पे का कहना है कि छूट में ये मामूली वृद्धि वास्तव में आवश्यक चीजों को संबोधित करने के लिए कुछ भी नहीं करती है।
Government is well aware that the rebate means nothing, but you know it's there, so it looks like they're doing something in an upward direction. We know that Medicare rebates are unlikely to be funded by either side of government because they have so eroded the Medicare rebate over such a long period of time that to actually be able to bring it back into line with what is needed is far too much money now.
स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कैनबरा में अपने राज्य और क्षेत्रीय समकक्षों के साथ मुलाकात की, जहां COVID-19 के लिए एंटीवायरल उपचार की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए और अधिक काम करने के लिए समझौता हुआ है। बढ़ते मामलों की संख्या और अस्पताल में इलाज की आवश्यकता वाले लोगों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता है। पिछले 24 घंटों में वायरस से 33 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई और COVID-19 से मरने वाले ऑस्ट्रेलियन लोगों की कुल संख्या 10,000 के करीब है। और नए वित्तीय वर्ष के साथ ही कोविड से संबंधित भुगतान समाप्त हो गए हैं। फेडरल सरकार का कहना है कि उसके पास आपातकालीन भुगतान के रूप में जो इरादा था, उसे जारी रखने की वित्तीय क्षमता नहीं है। रक्षा विभाग कई प्रशांत देशों को भेजी गई गार्जियन क्लास पेट्रोल नौकाओं की मरम्मत के लिए अधिकारियों को भेज रहा है, ताकि वे अवैध मछली पकड़ने जैसी चुनौतियों से निपट सकें। 2018 के बाद 15 नावों को विभिन्न देशों में भेजा गया है, लेकिन लेबर सरकार का कहना है कि नावों पर समस्या पिछले साल शुरू हुई थी और ये गठबंधन द्वारा तय की जानी चाहिए थी। रक्षा उद्योग और प्रशांत मंत्री पैट कॉनरॉय ने SBS न्यूज़ को बताया कि पूर्व सरकार ने समस्या को छिपाने की कोशिश की थी।
The first significant issue occurred in February 2021. So it's been going on for a year and a half now, and the last government not only did not fix the problem, they didn't disclose that problem to Australian taxpayers who are spending $2.1 billion on these Pacific patrol boats.
विपक्ष से टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद 14 लोग मारे गए हैं और 30 से अधिक अन्य लापता हैं। आपदा प्रतिक्रिया कार्यकर्ता पुलिस स्थानीय ग्रामीण मणिपुर राज्य के एक शहर नोनी में मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश में कई हफ्तों तक भारी बारिश के कारण ये भूस्खलन हुआ था। हाल के हफ्तों में भारत के पूर्वोत्तर में भारी बारिश और भूस्खलन में लगभग 200 लोग मारे गए हैं, बांग्लादेश में 42 लोग मारे गए हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रूसी सैनिक स्नेक आइलैंड पर वापस नहीं आएंगे, जो कि महत्वपूर्ण ब्लैक सी आउटपोस्ट है, जिस पर यूक्रेन ने अब नियंत्रण हासिल कर लिया है। उधर रूस ने कहा है कि वो सद्भावना के रूप में ये दिखाने के लिए द्वीप से हटा है कि वो यूक्रेन से अनाज भेजने की अनुमति देने के लिए मानवीय गलियारा खोलने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में बाधा नहीं डाल रहा था। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस अपने रणनीतिक महत्व के कारण किसी भी समय द्वीप पर वापस आ सकता है।
It significantly changes the situation in the Black Sea. It does not yet guarantee security. It does not yet ensure that the enemy will not come back. But this significantly limits the actions of the occupiers. Step by step, we will push them back from our sea, our land, and our sky.
न्यू साउथ वेल्स सरकार में राज्य के रेल संघ के बाद राज्य की नए कोरियाई निर्मित ट्रेन फ्लीट पर विवाद फिलहाल हल नहीं हो रहा। यूनियन ने आज अपनी औद्योगिक कार्रवाई जारी रखी है। सिडनी के केवल 30% ट्रेन उपलब्ध हैं। परिवहन अधिकारियों के साथ बातचीत कल गुरुवार को 7 घंटे के बाद टूट गई। $264 मिलियन मूल्य के सुरक्षा संशोधनों का सरकार का ड्राफ्ट प्रस्ताव ट्रेनों को पटरी पर लाने के लिए बहुत कम काम आया। यूनियन लिखित में एक औपचारिक सौदा चाहती है। रेल, ट्रैम और बस यूनियन स्टेट सेक्रेटरी एलेक्स क्लासेंस का कहना है,
We had a promise from a previous transport minister before the last state election, before the last enterprise agreement. We've had promise after promise, backflip after backflip, reneging after reneging. And yet again, the goalposts have moved. We've got a government that sits there, a government minister that sits there and makes a promise, and then 5 minutes later, somebody else is changing the ground rules. So there's a tug of war going on inside government. We're not sure who's coming out on top, but it would appear to be that it's not David Elliott.
संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले की आलोचना की है जो देश की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अधिकार को सीमित करता है। रूढ़िवादी प्रभुत्ववादी अदालत ने 3-6 मतों से रूलिंग दी है कि अमेरिका का क्लीन एयर एक्ट ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाले बिजली संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए ईपीए को व्यापक अधिकार नहीं देता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक का कहना है कि इस तरह के फैसले जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में रुकावट हैं।
Decisions like today's in the US or any other major emitting economy makes it harder to meet the goals of the Paris Agreement for a healthy, livable planet, especially as we need to accelerate the phase out of coal and transition to renewable energies.
David Elliott, New South Wales के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। एक वृद्ध देखभाल सलाह और सहायता सेवा वृद्ध देखभाल प्रदाताओं को ये सुनिश्चित करने के लिए बुला रही है कि वर्कर्स की स्थितियों में बदलाव से लोगों की स्थिति खराब नहीं हो। चेतावनी 2 घंटे की न्यूनतम शिफ्ट, नौकरियों के बीच यात्रा लागत और ब्रोकन शिफ्ट्स के लिए शुल्क सहित देखभाल इंडस्ट्री अवार्ड में परिवर्तन का अनुसरण करती है। ओल्डर पर्सन्स एडवोकेसी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी क्रेग गियर का कहना है कि जहां सुधार की स्थिति श्रमिकों के लिए एक सकारात्मक विकास है, वहीं वृद्ध लोगों की स्थिति और खराब हो सकती है।
Older people are saying that they want staff that are well paid and that can make a viable living out of delivering the care and support that they're looking for. What we're seeing with these changes, though, is that we need to have providers that are working to make sure that the levels of care are maintained. And so where the risk is if providers aren't finding rostering solutions, there is the potential for this change to impact on the availability of care and the amount of care an older person's receiving.
और भारत उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की दिन दहाड़े निर्मम हत्या के बाद जारी विवादों के बीच राजस्थान में 32 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया। तबादले की लिस्ट में उदयपुर के मौजूदा एसपी और आईजी का नाम भी शामिल है। बीते दिनों उदयपुर पुलिस की कन्हैयालाल को मिली धमकी को गंभीरता से नहीं लेने पर आलोचना हुई थी। कन्हैयालाल की हत्या के 2 आरोपियों को कल गुरुवार की शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय अदालत में पेश किया गया। आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद ने ऑनलाइन वीडियो पोस्ट जारी करके कहा था कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं। आरोपियों को अदालत में पेश करने के समय बड़ी संख्या में लोग अदालत परिसर में जमा थे और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर नारेबाजी की। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 68 सेंट और भारत के लगभग 54 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में विंबलडन में एक दर्शक की ओर थूकने के लिए निक कैरियोस पर $14,500 का जुर्माना लगाया गया है। निक का अगले दौर में चौथे नंबर के स्टेफनोस सित्सिपास के साथ मुकाबला होगा। कैरियोस ने कहा है कि वो एकल खिताब पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेंस डबल से बाहर हो रहे हैं। मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कैरियोस अपने खराब व्यवहार के लिए जुर्माने के बारे में नहीं बोलना चाहते थे।
Why would you be asking me a question about 2 days ago? Is it because you have no story for today?
No, I'm asking you because there's a current investigation.
But I played Filip Krajanovic today. Do you not want to know how I played today?
Well, I saw you play today.
Why fantastic. Don't you ask me a question about it?
Because there's an investigation.
Okay. Are you investigating it personally?
No.
So why do you care?
Because it involves you.
Okay.
And
I'm still in Wimbledon right now.
Exactly.
So let's talk about that.
So why don't you want to talk about it?
Because I've spoken about it.
और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 डिग्री। एडिलेड में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। मेलबर्न में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 10 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में बारिश, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। ब्रिस्बेन में बारिश, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।